अब इमाम के ज़माने के हालात को बयान करेंगे कि इमाम के ज़माने में कई साल तक बनी उमय्या और उनके मुखालिफों में खूंरेज़ लड़ाइयाँ होती रहीं, और उमवियों से लड़ने वाले अब्बासी थे। ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शोरिशें बरपा हो रही थीं, और उन शोरिशों के बेशतर रहनुमा लोगों को आले अली और खुशनूदी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जानिब दावत देते थे। यहाँ तक कि खुद अब्बासी भी यही नारा लगाते थे। बनी अब्बास ने अपनी तहरीक के इब्तदाई ज़माने में अलवियों के लिए अपने बुग्ज़ व कीने को जाहिर नहीं किया था, और इकतदार पर काबिज़ होने से पहले लोगों को धोखा देने के लिए बनी अब्बास ये करते थे कि अहले बैत पर जो बनी उमय्या की तरफ से मजालिम हुए थे वो बनी अब्बास दोहराया करते थे लोगों के सामने, और औलाद अली अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म हुए थे बनी अब्बास उन पर आंसू बहाते थे। आवाम को धोखा देने के लिए वो ये काम किया करते थे। इससे आवाम को ये ख्याल हुआ कि अब्बासियों की जो ये तहरीक है ये खुशनूदी है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए है, और उम्मत एक नए दौर में दाखिल हो रही है और लोगों को आज़ादी और उनके हुकूक मिल जाएंगे जो कि दसियों सालों से उमवियों ने गसब कर रखे थे। अलमुख्तसर ये कि बनी उमय्या की हुकूमत इख्तिताम को पहुंची और बनी अब्बास इख्तदार पर काबिज़ हो गए। बनी अब्बास ने अलवियों के नाम पर हुकूमत हासिल की। कुछ अरसा तो उन्होंने लोगों के साथ निस्बतन नरम रवैया अख्तियार किया, लेकिन जैसे ही उन्हें हुकूमत पे कंट्रोल हासिल हुआ, इख्तदार की बुनियादें मजबूत हुईं और दूसरी जानिब अलवियों की हिमायत में तहरीकें उठने लगीं, तो अब्बासियों पर खौफ तारी हुआ और उन्होंने अपने मुखालिफीन पर दबाव और जुल्म सितम शुरू कर दिया। और इख्तदार पर काबिज़ होने के बाद बनी उमय्या से ज़्यादा बदतरीन सलूक अब्बासियों ने शुरू कर दिया। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ अब्बासी हुक्मरान का ज़ालिमाना सलूक देख रहे थे। हालांकि इमाम खिलाफत से किनारा कश रह कर इस्लाम की हिफाजत, उसकी तालीमात की इशाअत में मसरूफ़ थे, इसके साथ ही साथ अलवियों के साथ हुक्मरानों का जुल्म व सितम भी इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम ने देखा। इमाम ये भी देख रहे थे कि आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मंसूर की अदावतों धमकियों का सामना रहता, और मंसूर ने इमाम की निगरानी में जगह जगह अपने सिपाही मुकर्रर कर रखे थे। ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इमामत के बारे में अपने हुक्म को आम शियों से भी पोशीदा रखा था, सिवाय चंद मुखलिस असहाब के अलावा किसी को नहीं बताया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद के कुछ हालात मुख्तसरन बयान करेंगे। शियों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात की आम तौर पर एक वजह अगले इमाम का तयन हुआ करती थी। कुछ वजूहात की बिना पर इमाम भी बहुत से शियों के लिए अनजान रहते, क्योंकि अगर अलल ऐलान किसी इमाम की इमामत का तयन हो जाए तो इस बात का इम्कान था कि इमाम को हुक्मरान की जानिब से सख्ती का सामना करना पड़ेगा। इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कुछ वजूहात की बिना पर आइंदा इमाम के बारे में परेशानी पैदा हो गई थी, जिनमें एक वजह तो ये थी कि शिया बिखरे हुए थे, मुख्तलिफ़ शहरों में थे, और दूसरी तरफ मंसूर की तरफ से सख्ती दबाव था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पर अवामुन्नास के सामने अपने जानशीन का तारुफ नहीं करा सकते थे। इसके अलावा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद ने भी नाहक इमामत का दावा किया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक और मसला भी था जिससे बास लोगों ने फ़ायदा उठाया, और वो इस्माइल इब्ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मसला था, क्योंकि इस्माइल जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े फ़र्जंद थे। इसलिए बहुत से शिया ये समझ रहे थे कि शियों की आइंदा क़यादत उनके ज़िम्मे होगी, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल इमाम होंगे। लेकिन इस्माइल अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही वफात पा गए, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस बात पर इसरार किया था कि शिया उनका जनाजा देख कर उनकी मौत का यकीन कर लें। इमाम का इसरार इसीलिए था ताकि आइंदा इन्हराफ पैदा ना होने पाए। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इस्माइल की महदवियत का दावा करके या दूसरे बहानों से शियों में एक फ़िरका पैदा कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम की शहादत के बाद शियों की 6 फ़िरक़ों में तकसीम बयान की गई है, जिनमें सिर्फ़ एक फ़िरका हक पर था, और ये वो लोग थे जो इमाम मूसा काज़िम अलैह सलाम की इमामत के मोतक़िद थे। रिवायत से ये भी मालूम होता है कि शिया ऐसे लोग नहीं थे कि जो बग़ैर तहक़ीक़ की इमामत का दावा करने वाले हर शख्स के दावे को कबूल कर लें, बल्कि वो ख़ास किस्म के सवालात करके इल्म दानिश को परखते थे, और जब इल्मी एतबार से इमामत का यकीन हासिल कर लेते तब इमामत को कबूल करते थे। शियों ने अब्दुल्ला इब्ने अफ्ताह, जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अफ्ताह के नाम से मशहूर थे, अब्दुल्ला अफ्ताह के नाम से, कुछ शियों ने उनसे हलाल और हराम और नमाज ज़कात वगैरह के बारे में सवालात करके उनको आजमाया, और जब उनके पास कोई इल्म नज़र नहीं आया तो उनसे मुंह मोड़ लिया। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने अपने हकीकी जानशीन इमाम मूसा इब्ने जाफर अलैह सलाम का काबिल एतमाद अफराद के सामने तारुफ करा दिया था। मोहम्मद इब्ने वलीद ने अली इब्ने इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम से रिवायत की है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम को अपने असहाब खास दोस्तों के एक गिरोह से ये फरमाते सुना कि तुम लोग मेरे बेटे मूसा से अच्छी नसीहतें हासिल किया करो, क्योंकि ये मेरे बेटों में सबसे ज़्यादा साहिब फजीलत हैं, यही मेरे बाद मेरे जानशीन और सारी कायनात पर अल्लाह की हुज्जत हैं। इमाम सादिक अलैह सलाम को हुक्मरान की तरफ से फ़िक्र व अंदेशा लाहक था, और ख़ुद इमाम की भी कड़ी निगरानी की जा रही थी, और आखिरकार इमाम को शहीद कर दिया गया। उसके बाद मंसूर ने इमाम सादिक अलैह सलाम के जानशीन का सुराग लगाना चाहा, तो उसने मदीने के वाली को ये लिखा कि अगर इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने किसी को बराह रास अपना जानशीन मुकर्रर किया हो तो उसकी गर्दन उड़ा दो, यानी उसको कत्ल कर दो। मदीने के वाली ने जवाब में मंसूर को लिखा कि इमाम सादिक अलैह सलाम ने 5 अफराद के हक़ में वसीयत फरमाई है, पहला ख़ुद खलीफा मंसूर है, दूसरा मदीने का वाली मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि ये ख़त तहरीर कर रहा था, और इमाम के दो बेटे अब्दुल्ला और मूसा काज़िम अलैह सलाम, और आपकी ज़ौजाए मोहतरमा जनाब हमीदा। मंसूर ने ख़त में ये नाम पढ़कर कहा कि अगर ऐसा है तो फिर इन अफराद के कत्ल करने की कोई सबील मौजूद नहीं है। इमाम सादिक अलैह सलाम ने अपने फ़र्जंद की हिफाजत के लिए इस तरह वसीयत फरमाई, जैसा कि बयान किया गया है कि इमाम ने काबिल एतमाद असहाब और ख़ास शियों के सामने अपने हकीकी जानशीन का तारुफ करा दिया था। इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैह सलाम की इमामत का आगाज़ मुश्किल तरीन ज़माने में हुआ। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि मेरे ख़्याल में इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैह सलाम के अलावा दीगर इमामों की ज़िंदगियों में ऐसा सख्त दौर कभी नहीं आया जब 148 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक अलैह सलाम की शहादत के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैह सलाम मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुए। तो उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि बनी अब्बास अपनी खिलाफत की इब्तिदा में पैदा होने वाले दाखिली इख्तलाफात और आपस की जंगों से फरागत पा चुके थे, और जिन अफराद की तरफ से हुकूमत को खतरात लाहक थे उन सब की सरकोबी कर दी गई थी। मंसूर ने हुकूमत मुखालिफ अहम शख्सियात और दीगर अफराद को कत्ल करके उनकी लाशों को एक जगह जमा कर रखा था। मंसूर अब्बासी ने अपने दौरे खिलाफत में बनी हसन और बनी हाशिम, यहाँ तक कि ख़ुद अपने करीबी रिश्तेदारों में से भी बहुत सी अहम शख्सियात को कत्ल करा दिया था, और जब उन सब से निमट चुका तो इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम को भी जहर देकर शहीद कर दिया। अब बनी अब्बास की सियासी ज़िंदगी में कोई रुकावट बाकी नहीं थी। ऐसे हालात में जब मंसूर का इख्तदार उरूज पड़ता, इमाम की इमामत का आगाज़ हुआ, और आप अभी नौजवान ही थे। इमाम ने मनसबे इमामत इन हालात में संभाला कि जब आप चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए थे, और आपके पुरखलूस शियों ने आपकी इमामत का ज़माना इस घुटी फिज़ा में गुजारा है, क्योंकि मंसूर के आदमी आप पर निगाह रखते थे, जिससे आपको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आम शिया हैरान थे, नहीं जानते थे कि वो किसकी तरफ रुजू करें, और जो अफराद आस्ताना इमामत से रुजू करते, वो भी इमाम सादिक के फर्जंद अब्दिल्ला अफ्ता और इस्माइल मरहूम के हामियों तक ही पहुंच पाते थे। हालात इतने सख्त थे कि जो लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद ये जानना चाहते थे कि इमाम वक्त कौन है, किसकी तरफ रुजू करना चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से इमाम तक पहुंच पाते। और इमाम उन्हें नसीहत फरमाते, खबरदार होशियार रहना, अगर दुश्मन को मालूम हो जाए कि तुम लोग मुझसे मिलते हो, इस्लामी तालीमात हासिल करते हो, तो इसका मतलब कत्ल हो जाना है। इमाम ने इन हालात में अपनी जद्दोजहद का आगाज़ फरमाया। इमामत के आगाज़ से लेकर आइंदा 35 साल जो इमाम ने गुजारे, वो ऐसी फ़िज़ा में गुजारे कि हुकूमत अहले बैत से दुश्मनी रखती थी, और इमाम हुकूमत की तरफ से मुसलसल खबरदार रहे और आम लोगों की निगाहों से पोशीदा रहे, सिवाय ख़ास लोगों के। सीरत आइम्मा अहले बैत में है कि इमाम के शागिर्दों और पैरोकारों के लिए भी इमाम से राबता रखना मुमकिन ना था, जैसा कि वो आपके वालिद के ज़माने में उनसे राबता कायम रखते थे। यहाँ तक कि वो रावियान जो इमाम से हदीस रिवायत करते थे, वो ज़ाहिर बज़ाहिर इमाम का नाम लेकर हदीस की रिवायत नहीं कर सकते थे, सिर्फ कुन्नियत ही से ज़िक्र करते। चुनाचे कोई रावी कहता कि मैंने अबा इब्राहिम या अबल हसन से सुना, या आपके अलकाबात मसलन अब्दे सोहले या आलिम कहकर हदीस रिवायत करते, यानी हुकाम की तरफ से सख्त निगरानी थी। इमाम अपने असहाब और ख़ास लोगों को ताकीद फरमाते कि वो अपने दीनी मामलात इबादात में भी तकिये पर अमल करें। और बहुत सी रिवायात से ज़ाहिर होता है, अल्लामा आशिम मारूफ हसनी कहते हैं कि ज़ाहिर होता है कि इमाम अपने वालिद के बाद बहुत एहतियात से दीन की हिफाजत फरमाते रहे। इसके बावजूद भी आपके दसियों असहाब को जिलावतनी और कत्ल की सज़ाएं दी गईं, खुद इमाम को भी कैद खानों में रखा गया। ये जितने भी खलीफा जो खलीफत और रसूल की हैसियत से हुकूमत करते, उनके ऐशो इशरत की, जुल्मो सितम की तवील दास्तानें हैं। ये मुसलमानों के बैतुल माल को अपने ऐशो इशरत पर लुटाते और लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम रखते थे। इमाम के 35 साल दौरे इमामत में बनी अब्बास के 4 खुलाफा ने हुकूमत की। उनमें से एक मंसूर दवानगी है, मंसूर अब्बासी, जो कि इमाम के पहले 10 साल दौरे इमामत में बरसरे इकतदार रहा। उसके बाद उसका बेटा मेहदी 10 साल तक इकतदार पर काबिज़ रहा। मेहदी के बाद उसका बेटा हादी 1 साल तक इकतदार पर काबिज़ रहा, और हादी के बाद हारून रशीद तकरीबन 12 साल तक इकतदार पर काबिज़ रहा है। हारून समेत तमाम खुलाफा के दौर में इमाम लोगों को इमामत की तरफ दावत देते रहे, और इन 4 खुलाफा में से हर एक किसी ना किसी तरीक़े से इमाम को कोई ना कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिशें करता रहा। सबसे पहले मंसूर दवानगी के बारे में मुख्तसरन बयान करेंगे। ये मंसूर दवानगी अहले बैत से शदीद बुग्ज़ व अदावत रखता था। इसके बुग्ज़ व अदावत की बड़ी दलील उस ख़ज़ाने की रिवायत है, जिसके मुताबिक मंसूर ने अपने ख़ज़ाने की चाबियां अपनी बहू के सुपुर्द करके उसको ताकीद की थी कि इस ख़ज़ाने को मंसूर की वफ़ात के बाद खोला जाए। मंसूर की बहू ने समझा था कि लाजमन इसमें हीरे जवाहरात कीमती अशियाँ होंगी, मगर जब उस ख़ज़ाने को खोला गया मंसूर के मरने के बाद, तो उस ख़ज़ाने में 100 से ज़्यादा अलवी मक्तूलीन की लाशें थीं, और उनके नसब नामों के पर्चों को उनके कानों में पिरो दिया गया था। अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी कहते हैं कि मंसूर के इस अमल की मेरे जहन में इसके अलावा और कोई तौजीह नहीं कि वो अपने जानशीन को अलवियों और हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ के जिससे उनके तख्त या उनके वजूद को कुछ ख़तरा हो, ऐसे ही सख्त इकदाम करने की जुर्रत दिलाना चाहता था। जैसा कि बयान किया गया कि इमाम के वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बहुत से अफराद इमाम के भाई अब्दिल्ला अफ्ताह की जानिब और आपके महरूम भाई इस्माइल की जानिब रागिब हो गए थे। इस वजह से शियों में ऐसी अबतरी फैल रही थी कि उनकी वहदत में रखना पड़ गया था। मंसूर ने इन दोनों गुमराह जमातों के लिए अपने दिल के ख़ज़ाने खोल दिए, दरवाज़े खोल दिए। इस ज़माने में मंसूर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने के गैर शिया उलमा की तरफ तवज्जा देना शुरू कर दी थी। उन पर दौलत बरसाने लगा, उनका मर्तबा बढ़ाने लगा और उनकी तज़ीम करने लगा ताकि किसी तरह उन्हें आवाम में नुमाया कर दे, ताकि लोगों की निगाहें आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनकी फ़िक्र उलूम से हट जाएं। उसने इन उलमा को अपना मुकर्रब बना लिया ताकि ये उलमा ये कहते रहें कि मंसूर और उसके बेटे पोते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार और वारिस हैं, और मंसूर के ख़िलाफ़ शरई है। मंसूर को इन उलमा में ऐसे लोग मिल भी गए जो उसकी मदह सराही करें, और मंसूर का ये अमल इल्म के कदरदानी के लिए नहीं था बल्कि इमाम के ख़िलाफ़ एहतियाती इकदाम था, क्योंकि उसको यकीन था कि अगर इमाम ज़ाहिर बज़ाहिर सामने आ गए तो हर जगह लोगों की गुफ्तगू का मरकज़ बन जाएंगे और हर इलाके के उलमा और तलबा और उनके वालिद के असहाब इमाम की खिदमत में आने लगेंगे, और मंसूर औलाद अली अलैहिस्सलाम में से किसी भी शख्स के लिए मकबूलियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो इसे अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझता था। हालात के पेश नज़र इमाम अपने असहाब और शियों से एक हद तक दूर रहे। मंसूर ने इमाम को बगदाद तलब किया, यानी इमाम को जिला वतन करके ज़बरदस्ती बगदाद भेजा गया, और बगदाद लाने के बाद एक अरसे तक इमाम को नज़रबंद रखा गया, बहुत सख्ती की गई, क़ैद कर दी, तन्हा कर दिया गया। लेकिन ये सिलसिला कितने अरसे जारी रहा ये मालूम नहीं, और बज़ाहिर एक मरतबा फिर मंसूर ही के दौरे खिलाफत में इमाम को जिला वतन करके इराक़ के इलाके अबजर भेजा गया। मंसूर के वासिले जहन्नुम होने के बाद उसका बेटा मेहदी अब्बासी इख्तदार पर काबिज़ हुआ। मंसूर अब्बासी का दौर उसकी मौत पर ख़त्म हुआ है, और 22 साल तक जुल्म सितम बर्दाश्त करने वालों ने सुख का सांस लिया। और जब मोहम्मद मेहदी के दौर का आगाज़ हुआ तो उसने शुरू में बेहतर रवैया अख्तियार किया और तमाम सियासी कैदियों को आज़ाद कर दिया, जिनमें बनी हाशिम और दीगर अफराद भी शामिल थे। अवाम के कत्लो गारत और कैदोबंद का सिलसिला ख़त्म किया, लेकिन कुछ ही मुद्दत बाद मेहदी का असली चेहरा अवाम के सामने आ गया। खलीफा और इसके ख़ास दोस्त मुसलमानों के बैतुल माल से रात दिन ऐशो इशरत के आदी हो गए थे। मेहदी के इस रवैये की वजह से इस्लामी माशरे में बुराइयाँ फैलने लगीं, नामुनासिब बेहुदा शायरी माशरे में आम होने लगी, जिसकी वजह से इफ़्फ़त व पाकीज़गी की फ़िज़ा बर्बाद हो गई थी। गयूर अफराद की सदाएँ बुलंद होने लगीं, मगर यह ऐशो इशरत में ही मशगूल रहा। माशरे में रिश्वत खोरी और फसाद रिवाज पा गया, अवाम उन्नास के मसाइल बढ़ गए, लोगों की ज़िंदगियाँ दुशवार हो गईं। मेहदी अब्बासी बाज़ औक़ात अपने बाप से बढ़कर अलवियों पर सख्ती करता था। वो फ़र्जंदाने अली अलैहिस्सलाम को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझता था और मुसलसल कोशिशों में रहता कि हर उस इकदाम को कुचल डाले जो अलवियों की रहबरी में अंजाम पा रहा हो। मेहदी के ज़माने में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत और मरकज़ी हैसियत का शोरा हो गया था, और ऐसे बहुत से अफराद जो आपसे कट गए थे, दूर हो गए थे, वो भी इमाम की तरफ वापस आ गए, और उलमा रावियाने हदीस आपसे रुजू करने लगे। दोस्त दुश्मन सबकी ज़बान पर तस्किरा जारी हुआ। मेहदी के 10 साल दौरे हुकूमत में इमाम तदरीस, नकल हदीस और शागिर्दों की तरबियत और मुख्तलिफ इलाक़ों के शिया रहनुमाओं के साथ रवाबित पैदा करने में मशगूल थे। मेहदी को शायद इमाम की बख्शिशों ने वहशत ज़दा कर दिया था, और वो ये समझने लगा कि इमाम ने रकूम जमा कर रखी हैं, और वो रकूमात जो है माल इमाम शियों को मुनज़्ज़म और मज़बूत करने पे खर्च कर रहे हैं। लिहाजा उसने इमाम की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया और इमाम को गिरफ़्तार करके बगदाद रवाना कर दिया गया। बगदाद में इमाम को क़ैद कर दिया गया। एक रात मेहदी ने ख्वाब में देखा कि मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 22 की तिलावत फरमा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें इख्तदार मिल जाए तो तुम ज़मीन पर फसाद बर्पा करोगे और कराबतदारों से क़तअ ताल्लुक़ कर लोगे। मेहदी अब्बासी उसी वक्त नींद से बेदार हुआ और अपने दरबान को बुलाया और हुक्म दिया कि इमाम मूसा इब्ने जाफ़र को मेरे पास लाओ। जब इमाम को लाया गया तो उसने इमाम को अपने पहलू में बिठाया और कहा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा है और वो इस आयत की तिलावत फरमा रहे हैं। फिर इमाम से कहता है कि क्या आप मुझे इत्मीनान दिला सकते हैं कि आप मेरी या मेरी औलाद के ख़िलाफ़ क़याम नहीं करेंगे। इमाम ने फरमाया, ना मैंने ऐसा काम किया है और ना ये मेरी खसलत है। उसने कहा कि आप सच फरमाते हैं। और फिर इमाम को उसने 3,000 दीनार देकर रिहा कर दिया, वापस मदीने भिजवा दिया। इसी मेहदी अब्बासी के दौर में 2 या 3 मरतबा इमाम को मदीने से बगदाद ले जाया गया। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा दीगर आइम्मा की निस्बत इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा गैर मामूली वाक़यात नक़ल हुए हैं। मेहदी के बाद उसका बेटा मूसा अल हादी खिलाफत पर काबिज़ हुआ और 1 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहा। हादी ऐशो इशरत पसंद, मगरूर, शराबखोर, कम अक़ल, लाओबाली, संगदिल, बदकिरदार शख्स था। वो अपने बाप के ज़माने में भी इस्लामी बैतुल माल से बेहुदा महफिल मुनक्किद करता था और इनमें गाने वालों को बुलाया जाता, शराब नोशी, ऐशो इशरत और गाने बजाने में मशगूल रहता। वो इतना ज़्यादा इन महाफिल को मुनक्किद करता था कि कभी उसके बाप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। और जैसे ही उसका बाप वासिले जहन्नुम हुआ, ये तख्त खिलाफत पर काबिज़ हुआ, तो आज़ादी के साथ ऐशो इशरत में मशगूल हो गया और मुसलमानों के बैतुल माल को अपनी शबो रोज़ की महाफिल में बर्बाद करने लगा। मौरखीन के मुताबिक वो गाने वाले शख्स इब्राहिम मूसली को अपने दरबार में बुलाकर गाने सुनता और इस कदर माल और दौलत बख्शता कि एक मरतबा महफिल ख़त्म होने के बाद हादी ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि इब्राहिम को बैतुल माल के ख़जाने में ले जाए और वो जितना माल बैतुल माल से लेना चाहे ले सकता है, यहाँ तक कि अगर तमाम बैतुल माल ले जाना चाहे तो इजाज़त है। हादी की बदकिरदारी और बदआमालियों की वजह से लोग गम और गुस्से का शिकार हो गए थे। और एक और अहम चीज़ जिसके वजह से आवाम का गम गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया था, जो आवाम के गम गुस्से का सबब बनी थी, वो ये थी कि बनी हाशिम और अलवियों के साथ हादी का सख्त रवैया। उसने सादात और बनू हाशिम को सख्त दबाव में रखा, उनका वजीफ़ा बंद कर दिया और हुक्म दिया कि उन्हें मुख्तलिफ इलाक़ों में बगदाद रवाना कर दिया जाए। इन बदतरीन हालात ने बनू हाशिम के दिलेरों को हुकूमत के ख़िलाफ़, जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आमादा कर दिया क़याम पर। और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पोते हुसैन की रहबरी में अब्बासी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हुसैन को हुसैन शहीद फ़ख़्र के नाम से ज़िक्र किया गया है, क्योंकि वो फ़ख़्र के मकाम पर जंग में शहीद हुए। हुसैन शहीद फ़ख़्र बहुत अरसे से क़याम की फ़िक्र में थे, मगर हादी अब्बासी की जानिब से अलवियों पर शदीद दबाव इस क़याम में जल्दी का बाइस बना। इसका मुकर्रर वक्त तो हज का ज़माना था, मगर हाकिम मदीना, जिसका ताल्लुक़ हज़रत उमर के ख़ानदान से था, उसने अलवियों पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कीं। उसका ये तर्ज़ अमल इस बात का सबब बना कि क़याम जल्द शुरू हो गया। मदीना और अतराफ़ के हाशमियों की बड़ी तादाद हादी के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा हुई और हादी अब्बासी ने इस लश्कर से जंग के लिए फ़ौजें रवाना की। फ़ख़्र की सरजमीन पर दोनों फ़ौजें आपस में टकराईं, सख्त जंग हुई जिसमें हुसैन और दीगर हाशमी बुज़ुर्ग शहीद हुए। बाकी फ़ौज मुंतशिर हो गई, कुछ को कैदी बना लिया गया और उन्हें बगदाद मुंतकिल करने के बाद कत्ल कर दिया गया, और दफन करने के बजाय उनके सर काट कर हादी अब्बासी को रवाना किए गए। यह हादसा नहायत दर्दनाक था, जिसमें तमाम शियों और बिलखसूस ख़ानदान पैगंबर के दिलों को गमजदा कर दिया था। हादी का यकीन था कि यह तहरीक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रहबरी में अंजाम पाई है। जब शहीद फ़ख़्र का हुसैन शहीद फ़ख़्र का सर कलम करके हादी के पास लाया गया, तो उसने कहा कि खुदा की कसम, हुसैन ने मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम के हुक्म से क़याम किया है और हुसैन उन्हीं के ज़ेर असर थे, क्योंकि इस ख़ानदान के साहिब वसीयत यानी बासर वही हैं। अगर मैं उन्हें ज़िंदा छोड़ूं तो खुदा मुझे कत्ल कर दे। जब इमाम को उसकी इन बातों का इल्म हुआ, तो इमाम ने उसके हक़ में नफरीन फरमाई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत की खबर मदीने पहुंच गई। हादी के दौर खिलाफत में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बगदाद लाकर शहीद करने की कोशिशें की गईं, लेकिन अहले बैत के साथ बनी अब्बास के इस रवैये पर हादी के दरबार से वाबस्ता एक फ़कीर को दिली सदमा हुआ था और उसने हादी को समझाया और हादी को इस मंसूबे से दस्तबरदार होने पर आमादा किया। हारून रशीद ने भी बचपन ही से ऐशो इशरत के माहौल में तरबियत पाई थी। उसकी 2000 कनीज़ें थीं, जिनमें 300 कनीज़ें सिर्फ गाने बजाने वगैरह के लिए मखसूस थीं। एक महफ़िल में खुश होकर हारून रशीद ने 30 मिलियन दिरहम उस महफ़िल में शरीक लोगों पर निछावर करने का हुक्म दिया और एक मर्तबा खुश होकर एक गाने वाले को एक इलाके की हुकूमत दे दी। ये सिर्फ चंद नमूने हैं और न जाने कितनी दास्तानें हैं। और ये तमाम ऐशो इशरत मुसलमानों के बैतुल माल से हुआ करता था। ये तमाम माल गरीब तंग दस्त किसान और आवाम की मेहनत मुशक्क़त की कमाई थी जो ऐशो इशरत पर खर्च की जा रही थी। मज़ीद ये कि हारून रशीद अपने तमाम जराइम पर दीनदारी का पर्दा डालता और वो ये चाहता था कि उसके तमाम आमाल से दीनदारी जाहिर की जाए, जाहिर हो। और उसने इस काम के लिए चंद दुनिया परस्त फुकहा और काजियों को ख़रीद भी लिया था जो उसके तमाम आमाल की इस्लामी तौजीह आवाम के सामने पेश करें। हारून रशीद के गुनाह जराइम, जिनमें कुछ का बयान करना भी मुश्किल है, उन सब के लिए कोई ना कोई दीनी तौजीहात पेश कर दी जाती थी। इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम का वास्ता हारून जैसे मक्कार खलीफा, मक्कार दुश्मन से पड़ा था, जिसने रियाकारी के ज़रिए लोगों को धोखा दे रखा था और ख़ुद को आदिल और बाईमान खलीफा पहचानवाता था। इमाम की ज़िंदगी के वो साल जो हारून के अहद हुकूमत में गुजरे, उनमें बहुत मुश्किलों का सामना रहा। हारून ने भी इमाम की निगरानी के लिए सिपाही अफराद मुय्यन कर रखे थे और इमाम से सख्त बुग्ज़ रखता था, इमाम को क़ैद में रखता। इसके साथ ही मकरो फरेब से काम लेते हुए ज़ाहरी तौर पर एहतराम भी करता। किताब आइम्मा की फ़िक्री और सियासी ज़िंदगी में है कि इमाम की असीरी के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात नकल हुई हैं। मजमूई तौर पर उन रिवायात से ये बात सामने आती है कि इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा हारून के हाथों क़ैद में रखा गया है। यानी इमाम 2 मरतबा हारून के हाथों कैदी बने हैं, जिनमें से दूसरी मर्तबा की क़ैद का खात्मा इमाम की शहादत पर हुआ है और पहली मर्तबा असीरी की मुद्दत तारीख़ में दर्ज नहीं है। कुछ रिवायात इमाम की जिंदाने हारून से पहली मर्तबा रिहाई की खबर देती हैं और इन्हें उनको कई रावियों ने नकल किया है जो वाक़िया है इमाम की पहली मर्तबा रिहाई का। मसूदी ने लिखा कि हारून रशीद के महल का निगरान अब्दुल्ला इब्ने मालिक कहता है कि हारून का एक आदमी मेरे पास ऐसे वक्त में आया कि कभी उस वक्त मेरे पास नहीं आया था और मुझे लिबास तब्दील करने की मोहलत भी नहीं दी और इसी हाल में हारून के पास ले गया। और वो कहता है कि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। हारून ने अब्दुल्ला को देख कर कहा कि मैंने ख्वाब में एक हबशी को देखा है, उसके हाथ में कोई हथियार है और वो मुझसे कह रहा है कि तुमने अगर अभी मूसा इब्ने जाफ़र को रिहा नहीं किया, आज़ाद नहीं किया, तो इस हथियार से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, सर काट दूंगा। हारून ने अब्दुल्ला से कहा कि फ़ौरन जाओ और उन्हें आज़ाद कर दो और 30,000 दिरहम भी उनको दो। अगर वो चाहें तो यहीं रहें और अगर वो मदीने जाना चाहें तो सफ़र का इंतज़ाम कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मालिक कहता है कि मैंने बेयकीनी के साथ 3 मरतबा पूछा कि क्या आपका हुक्म यही है कि उनको रिहा कर दूं, और हारून ने हर मरतबा अपनी बात को दोहराया। बस अब्दुल्ला वहाँ से निकल कर कैद खाने पहुँचे और इमाम को आज़ाद कर दिया। इमाम ने फरमाया कि मैंने अभी अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। आप फरमा रहे थे कि ऐ मूसा, तुम्हें मज़लूम क़ैद किया गया है, ये दुआ पढ़ो, आज ही रात आज़ाद हो जाओगे। उसके बाद इमाम ने वो दुआ पढ़ी जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।